हैं है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय संख्या है 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्लोक संख्या 11 और 12। मेरे पीछे दोहराइए, यहाँ पर लिखा हुआ श्लोक है 12 नंबर है ना, तो मेरे पीछे बोलिए, फिर उसके बाद हम 11-12 दोनों एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद एवं तात्पर्य होगा। आशा पाश शतैर्बद्धा, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो गया? भारत श्रीलंका से हार गया करके आप नाराज हो गए? जोर से बोलो, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम् न्यायेनार्थ संचयः अन्यायेनार्थ संचयान् आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान् आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान् शब्दार्थ 11 और 12 के दोनों के शब्दार्थ इस प्रकार से, 11 नंबर का श्लोक ऐसा है, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः काम भोगोप परमा एतावद इति निश्चितः। मेरे पीछे बोलिए, चिंताम भय तथा चिंताओं का अपरिमेयाम अपार च तथा प्रलयांतम मरण काल तक उपाश्रितः शरणागत काम उपभोग इंद्रिय तृप्ति परमः जीवन का लक्ष्य एतावत इतना इति इस प्रकार निश्चितः निश्चित करके आशा पाशा आशा रूप बंधन शतैः सैकड़ों के द्वारा बद्धः बंधे हुए काम काम क्रोध तथा क्रोध में परायणः सदैव स्थित इहन्ते इच्छा करते हैं काम काम भोग इंद्रिय भोग अर्थम के निमित्त अन्यायेन अवैध रूप से अर्थ धन का संचयन संग्रह। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के। अनुवाद। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे आसुरी लोग कैसे रहते हैं। अब ये सुनिए, कुछ कुछ चीजें हमको भी लागू होती है। शायद आप ऐसा गलत फहमी मत करो कि मेरे बारे में कृष्ण क्यों बोल रहे हैं। इसमें कृष्ण भगवान आसुरों के बारे में बोल रहे, ठीक है, मतलब स्वयं के बारे में। उनका कृष्ण बोल रहे आसुरों का स्वभाव, उनका विश्वास है कि इंद्रिय की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, मतलब भोग करना। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी लोग केवल मरने के दम तक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कैसा भी धन संचय करते अवैध रूप से। अभी आजकल का नोटबंदी उसका एक बहुत ही जाहिर उदाहरण है। अभी तात्पर्य देखो शिल प्रभुपाद के। आसुर लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं रखते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वो एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है। प्रभुपाद बोल रहे जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है, चलो बुलावा आया है, जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर भी एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है, अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं होती। सब लोग हाथ जोड़िए, वापस सीधा बैठे सत्यनारायण की तरह पूजा में बैठते वैसे, और मेरे पीछे बोलिए जोर से बोलने का, मेरे को सुनाई देना चाहिए। ओम अज्ञाना, जोर से बोलिए, प्रसाद है बाहर खिचड़ी का। ओम अज्ञाना तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाया चक्षुरुन उन्मिलिताम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादे गौरा भक्ता वृंदा। अभी दोनों हाथ हवा में उठाई ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोले मेरे पीछे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आप सभी उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों का हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कान संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो लगभग हम सभी लोगों के जीवन के बारे में वर्णन कर रहा है। मतलब यूं बोले कि यह हमारा बायोडाटा है, यह हमारा रिज्यूमे है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं और कुछ बुरे रहते हैं। तो आज के श्लोक में किस तरह से बुरे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या रखते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, इसमें बताए हैं। कुछ कुछ चीजें बहुत सारी मिलती जुलती है कलयुग के प्रायः सभी लोगों से। मरते दम तक यह आशा कभी छोड़ते नहीं कि मैं दुखी होऊंगा, उनको हमेशा लगता है कि मैं सुखी होऊंगा। और उस आशा पाश शतैर्बद्ध सैकड़ों सैकड़ों आशाओं से घिरे हुए लोग, उनको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा इस तरह से नहीं तो उस तरह से। एक बार एक व्यक्ति शराब खाने में बैठा था, ऐसा टेबल था, शराब जो थी गिलास में भरी हुई थी और वो आता था, वो गिलास को ऐसा देखता था और चार पग वो बाहर कदम बाहर दरवाजे की तरफ जाता था, वापस अंदर आता था। आधे घंटे एक घंटे से यही धंधा चल रहा था। वो गिलास जो था वो ट्रांसपेरेंट था, कांच का गिलास था, सब दिखता था अंदर का। वो आता था वापस आके देखता था और वापस जाता था। बाजू वाले टेबल पे एक उसके जैसा ही कोई व्यक्ति, उसका ही दोस्त बैठा हुआ था, काफी देर से वो देख रहा था क्या चल रहा है इसका नाटक, ये धाड़स क्यों नहीं करता पीने का, एक तो पेग मारने का शायद पहली बार पी रहा है उसको लगा। लेकिन कुछ ड्रामा अलग ही था, वो आता था ऐसा देखता था और वो वापस भाग जाता था। तो दूसरे वालों को रहा नहीं गया, वो आया एकदम अपना हाथ का जो शर्ट पीछे किया और उसने सीधा उठा लिया और पी लिया। इतना क्या डरने की बात है, पहली बार पी रहा है क्या? नहीं महानुभाव, आपने बहुत बड़ी गलती की, मैंने उसमें जहर मिलाया था और कब से सोच रहा था कि पीऊं या नहीं पीऊं, पीऊं या नहीं पी। अभी ये लोग पहले जहर पी रहे, उसमें और जहर मिला के जहर पीने का प्लान था उसका। यह हम लोगों का कलयुग का जीवन है, यह कलयुग के जीवन का ऐसा ही है। पहले इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, उसमें और भी पाप कर्म करते हैं भगवान को छोड़ करके। वो पूछता है ऐसा क्यों किया आपने, जहर क्यों मिला, फिर पहले बोलने का ना मैं क्यों, मैं अभी मर जाऊंगा, पागल है तो मेरे को पूछा ही नहीं, सीधा के पी लिया। क्या हो गया तो बता दो मुझे, अभी मैं मरने वाला हूं, लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? बोले क्या हो गया? आज सुबह सुबह मेरा घर में बहुत झगड़ा हो गया पत्नी के साथ, बहुत झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि वो अपने बच्चे लेके मायके चले गए, वो टेंशन था। फिर मेरे को दफ्तर आने के लिए, ऑफिस आने के लिए लेट हो गया, बीच में मेरे को बहुत लेट हो गया रास्ते में ट्रैफिक के कारण, लेकिन मैं अपने बॉस को समझा रहा था, बुझा रहा था, वो समझ नहीं पाया, मेरे को उसने जॉब से निकाल दिया। जैसे जॉब से कंपनी से बाहर फेंक दिया मैं आ गया, तो मेरे को फोन आया कि आपने, आपकी पत्नी जो मायके जा रहे थे उसका बस एक्सीडेंट हो गया और मर गए बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा अभी मेरे को जिंदा रह के फायदा ही क्या है, तो मैं कुछ जहर खरीद करके लाया था और इस दारू के बोतल में डाल के रखा था गिलास में। मैं सोच रहा था अभी मैं पीऊं या नहीं पीऊं, पीऊं या दूसरी शादी करूं, क्या करूं, इसके बारे में मैं सोच रहा था। और मेरे जीवन में आत्महत्या भी नसीब नहीं है। तो ये कलयुग का जीवन है, चिंता म परिमेयाम च अनेक चित्त विभ्रांता, चिंता म परिमेयाम च, 11वां श्लोक, आशा पाश सतैर बद्ध, इतने सारे आशा रहते हैं, इतने सारे पाश रहते हैं कि लोग हमेशा हमेशा दुखी है, लेकिन फिर भी उनकी ऐसी आशा रहती कि नहीं मैं ऐसा सुखी हो जाऊंगा। अभी एक आदमी ने करेला खाया, करेला कैसा लगता है? करेला कैसा लगता है? कड़वा लगता है, बराबर। अभी मैंने खाया कड़वा लगता है, आपने खाया तो भी कड़वा ही लगेगा ना, बराबर। आपने खाया तो भी कड़वा ही लगेगा, कोई भी खाने दो करेला वो कड़वा ही लगेगा, बराबर। वैसे ही आप लोग देखिए, आपके दादाजी थे क्या कभी सुखी थे? आपके पिताजी हैं वो कभी सुखी हुए आज तक? आप खुद के जीवन में देखिए, 50-60 साल के जीवन में फिर भी कुछ ना कुछ आशा रह जाती है, अरे इतना होता तो अच्छा, मेरा बेटा इंजीनियर के बजाय डॉक्टर बन जाता तो और अच्छा होता था, वो बंबई की जगह अमेरिका चला जाता तो और अच्छा होता था। ये कुछ ना कुछ आशा रह ही जाती है, और हमेशा हमेशा ऐसे पास में बंधे हुए रहते। एक बार एक दुकानदार था और वो मरणासन शैया पे लेटा हुआ था। इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम काल तक व्यक्ति आशा नहीं छोड़ता, तो मरणासन शैया पर लेटा हुआ था, अभी मरने वाला है कुछ क्षण में। तो उसने पूछा, मेरी पत्नी कहां पर है? बोले, स्वामी मैं आपके चरणों में हूं। मेरे भाई कहां पर है? भैया हम आपके इर्द गिर्द आजू बाजू ही है। मेरे बेटे कहां पर है? हम इधर ही खड़े पिताजी। मेरा नौकर कहां पर है? मैं इधर ही खड़ा हूं दरवाजे पे। स्वामी जी आप चिंता मत करो। अरे गधो, आप सभी लोग इधर ही हो तो दुकान में कौन है? ऐसा बोल के मर गया वो। तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, लोगों की आशाएं छूटती नहीं है। मरते दम तक कैसे पैसे कमाओ, कैसे उसको सिक्योर रखो, कैसे प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करो, उसके नाम करो, इसके नाम करो, ये करो वो करो, लेकिन कभी हम राधा राजबिहारी के चरणों के बारे में सोचते नहीं है, कभी नहीं सोचते। और आखिरी लाइन देखो, इहंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान, अन्याय के मार्ग से पैसा कमाते हैं। श्रीमद् भागवत की व्याख्या के अनुसार, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यच्छे है कर्म भी। पहले स्कंद में बोला गया है कि व्यक्ति को जितना शरीर के लिए और आत्मा को एकत्र रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना मिलता है, उससे ज्यादा अगर कमाना है, कोई कितना आप करोड़ हजारपति देखो, लखपति देखो, करोड़पति देखो, अरबपति देखो, खरबपति देखो, कौन सा भी पति देखो आप, अगर वो जरूरत से ज्यादा पैसा कमा रहे तो वो अन्याय के मार्ग से कमा रहे। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देर इज क्राइम, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देर इज क्राइम। तो इसीलिए कृष्ण भगवान भी आज के इस श्लोक में बोल रहे हैं कि लोग अन्याय के मार्ग से धन संचय करते हैं, ये नहीं देखते कि मैं इतने सारे संकटों में घिरा हुआ हूं, इतने सारे समस्याएं हैं। एक बार एक शिकारी था, वो शिकार करने गया था जंगल में, उसके हाथ में लंबी वाली बंदूक थी, आप देखते ना बहुत लंबी वाली बंदूक थी, शेर सामने आ गया और उसने, शेर को मालूम था इसके हाथ में बंदूक है, उनको भी थोड़ा थोड़ा अनुभव है ना, बंदूक आ गया तो हमारे भाई लोग चले गए हैं, मैं भी जाऊंगा अभी, तो शेर को मालूम था इसके हाथ में बंदूक है, मैं अभी मरने वाला हूं, उसने पूरा सामने टारगेट रखा ही था और उसने बटन दबाया। समस्या यह हो गई कि उसके अंदर कोई कारतूस नहीं था, उसके अंदर कोई गोली नहीं थी, तो पिचक करके आवाज आ गया और कोई गोली निकली नहीं, शेर बच गया और शेर समझ गया शिकारी खुद यहां शिकार हो गया, वो शिकार करने आया था शिकारी, वो खुद शिकार हो गया, तो तुरंत वो शेर ने छलांग लगाई उसके ऊपर, उसने अपनी बंदूक फेंक के भागना चालू कर दिया, टुकड़ 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 भागने लगा भागने लगा भागने लगा और शेर उसके पीछे लगा, आगे भाग रहा है पीछे शेर आ रहा है और पीछे देख रहा था वो ऐसा। समस्या ये हो गई, जंगल थे, जंगल में कुआं था, समझ में नहीं आ रहा था ये कुआं है या नहीं है, और बेचारा पीछे देखने के चक्कर में शेर की तरफ वो कुएं में गिर पड़ा। ये कुआं बहुत गहरा था और बहुत ही बड़ा था, ये कुआं बहुत गहरा था, बहुत ही बड़ा था, पुराना था और नीचे गिर पड़ा। जैसे ही कुएं में गिर पड़ा तो गिरते गिरते वहां पर एक पुराना पेड़ का एक टहनी उसके हाथ को लग गया, क्योंकि जंगल का कुआं था, कितने सारे पेड़ बीच में आते हैं, कुएं में भी साइड में दीवार में उग के आते हैं, तो ऐसे एक पेड़ को पकड़ करके वो लटकने लगा, टहनी को पकड़ करके वो लटकने लगा बीच में, इधर कुआं उधर खाए बीच में लटके। ऊपर देखा उसने, वो जो शेर था वो जीभ निकाल निकाल के वो देख रहा है महाप्रसादे गोविंदे, वो बोल रहा है मन में कब ये ऊपर आएगा और कब मैं इसको खाऊंगा, सोच रहा है वो, आज संडे फिस्ट इधर ही हो गया मेरा, सोच रहा था वो, बीच में लटक रहा है। उतने में उसको कुछ आवाज सुनाई दी, उसने नीचे देखा तो उस कुएं में, गहरे कुएं में नीचे एक अजगर था। जैसे उसने आवाज सुनी या उसको मनुष्य का सुगंध या दुर्गंध जो भी बोलो उसके लिए सुगंधी है वो आ गया, उसको भी लगा महाप्रसादे गोविंदे मेरा भोजन आ गया, तो उसने मुंह खोल के बैठ गया। अभी कैसी परिस्थिति है आप कल्पना कीजिए, ऊपर शेर नीचे अजगर, ना नीचे जा सकते ना ऊपर जा सकते, क्या करेगा अभी बेचारा। जय श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ऊपर शेर है नीचे अजगर है, उतने में उस व्यक्ति ने सुना कुरकुर 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 आवाज आने लगी। कैसी आवाज थी वो? उसने जिस टहनी को पकड़ा था वो टहनी को उसके जड़ में, टहनी के जड़ में दो चूहे, वो टहनी को दो चूहे खा रहे थे। कुरकुर कुरकुर कुरकुर। उसी समय उसने देखा पूरा पसीना 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 हो गया, पूरे कपड़े गीले हो गए अंदर से बाहर से। उतने में क्या हो गया, वो ऊपर से छलांग लगाया था और वो टहनी को पकड़ा था और जोर से झटका बैठा था उस पेड़ को, और उसी पेड़ को बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था और जोर से झटका बैठा था। अभी आप लोगों को मधुमक्खी मालूम है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बोलता हूं, ठाणे में हाल ही में पिछले महीने में मधुमक्खियों ने एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण किया, सारे मधुमक्खियों उसको काट दिया, इतना काटे कि वो मर गए हो, आपको याद है मर गए हो। यहां पे इसको सारे मधुमक्खी अटैक किए, आक्रमण किए, क्योंकि उनके मधुमक्खी के छत्ते को धक्का लगा था जोर से, कोई भी लगाने दो आसपास जो जाएगा वो मर जाएगा वो सुखी रहेगा। अगर आपका दुश्मन जा रहा है और आप पत्थर मार के भाग जाते हैं तो उसको पकड़ेंगे, ऐसा करो मत। तो मधुमक्खियों ने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको काटने लगे। अब आप सब लोग जाने माने अर्वाचीन मानव समाज के, आधुनिक विज्ञान के, 4G के समान के, स्मार्टफोन के लोग, अभी मोबाइल स्मार्ट हो गया और लोग डल हो गए, तो ऐसे जमाने के लोग अभी सोचिए कि ये व्यक्ति कितना सुखी है, मुझे बताइए इसमें कितना सुख है, बताओ क्या सुखी है, आप सोच विचार करके बोलिए। एक मिनट का टाइम लीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। कुछ मिला है नहीं ना इसमें, वो व्यक्ति सुखी है क्या? क्या होता है, वो मधुमक्खी के छत्ते को जोर से धक्का लगता है, इसके कारण क्या होता है, उसमें से जो मध है, मधु ना क्या, शहद, शहद बोलते हैं मधु बोलते हैं, जो भी है शहद, वो टपकने लगता है और एक बूंद टपकता है। समस्या यह होती है कि ऊपर शेर है अभी भी है, नीचे अजगर अभी भी मुंह खुला हुआ बैठा है, वो चूहे काट रहे टहनी को और मधुमक्खी उसको काट रहे, तो उसको इतनी वेदनाएं होती रहती है, इतनी तकलीफ होती रहती है कि वो जोर जोर से चिल्लाता रहता है, मां हे भगवान। और जैसे मुंह खोलता था तो उसके मुंह में एक शहद का बूंद, शहद की एक बूंद गिरती थी। उस टेस्ट के कारण बेचारा सब भूल जाता है, ऊपर शेर है, नीचे अजगर है, दो चूहे काट रहे हैं, मधुमक्खी उसको काट रहे हैं, सब भूल जाता है। अब ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, आप वापस आइए। आज तारीख है 9 जून 2017, हम राधा राज बिहारी के चरणों में बैठे हुए हैं और हम अपना अपना नाम लीजिए, प्रभुपाद जी के चरणों में बैठे हुए हैं, यह हमारी कहानी है। आप ये मत सोचो कि कोई प्रभु जी महाभारत से या हितोपदेश से, कोई शास्त्र से कोई काल्पनिक कथा बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं, ये सत्य बात है, ये सत्य घटना है। ऊपर का जो शेर है वो मृत्यु की टंगी हुई तलवार है। कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। कोई बोल सकता है कब हम मरेंगे? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता कब और कैसे मरेंगे, कोई नहीं बोल सकता। मृत्यु की टंगी हुई तलवार है। उसके बाद नीचे का अजगर कौन है? काल। नीचे का अजगर कौन है? काल। अभी समझो मेरी उम्र कुल मिलाकर 100 साल जीने की है और मेरा अभी मेरा पूरा आयु 100 साल का है और मैं अगर 50 साल का हो गया तो अजगर ने कितना निकला हुआ है मेरे को? आधा। आधा मैं अजगर के मुंह में गिर पड़ा हूं। अभी कौन बोल सकता है 100 साल जिएगा पिज्जा पास्ता वेज मंचूरियन चाइनीज नूडल खाने के बाद सब मैदा? कौन इतना देर जिंदा जिएगा? और ये भी खाने का छोड़ दो, इतने सारे बंबई जैसे शहर में इतने सारे यातायात में कौन जिंदा ज्यादा रह सकता है? इसीलिए अजगर ने कितना हमको निगला है हमें मालूम ही नहीं है। मृत्यु कब आएगी कोई नहीं बोल सकता। बोल सकता है क्या मृत्यु कब आएगी? बोल नहीं सकता। दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, मैं लास्ट टाइम बताया इधर, दो प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक हमारे पाठशाला के एग्जाम जो अप्रैल मार्च में होती है, वही होंगे कई सारे बच्चों के, हो गई ना। तो और दूसरे है जीवन के एग्जाम। जीवन के जो एग्जाम है परीक्षा जो है वो मृत्यु है, और पाठशाला के एग्जाम जो है वो अप्रैल मार्च में होती है। दोनों में फर्क क्या है कि पाठशाला में बोलते ये किताब ले लो पढ़ो और मार्च अप्रैल में आ जाओ, किताब देते हैं लेकिन प्रश्न नहीं बोलते, क्वेश्चन क्या है वो नहीं बोलते कभी, खाली परीक्षा की तारीख बोलते हैं 12 मार्च को है, 15 मार्च को है, 15 अप्रैल को है। और जीवन की जो परीक्षा है एग्जाम है उसमें कृष्ण भगवान 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोल दिए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यस प्रयाति मद्भावम याति नास्त्यंतर संशय। मृत्यु एग्जाम है और मेरा स्मरण करना उसका उत्तर है। कृष्ण ने एग्जाम भी बोल दिया और कृष्ण एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने पेपर का उत्तर भी फोड़ दिया, पेपर लीक कर दिया। क्वेश्चन क्या है? एक स्मरण करना है। किसका करना है? कृष्ण का। वो उत्तर भी भगवान ने बोल दिया। समस्या एक है कि उन्होंने तारीख नहीं बताई एग्जाम की, तारीख नहीं बताई। किसी को मालूम है कब मरेंगे हम? किसी को मालूम है? कुछ नहीं मालूम। तो कौन सी ज्यादा मुश्किल है, जीवन की परीक्षा मुश्किल है या पाठशाला की परीक्षा? हाँ, मालूम नहीं कब आएगी। इसीलिए हमें हमेशा पेन और पेपर हमेशा साथ में रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये पेन और पेपर है ये साथ में रखना चाहिए। कभी भी अमराज मांगेंगे दे दो पेपर ले लो, कभी भी रेडी रहना चाहिए। हमको मालूम नहीं मृत्यु कब आएगी, कितना हमें अजगर ने निगला है मालूम नहीं हमें। और जो चूहे दो है ना काला और सफेद, वो दिन और रात है। आयुर हरते वय पुंसाम उद्यम अस्तम चयन नसो तस्तर्ते यच्छने नीत उत्तम श्लोक वार्तया। दिन और रात जो है वो हमारा आयु हरण कर रहे हैं ये दो चूहे। मधुमक्खियां क्या है? ये त्रिविध ताप है, त्रिविध ताप है मतलब निसर्ग से आने वाले दुख, हमारे मन और शरीर से आने वाले दुख, और इतर जो अपने अड़ोस पड़ोस के लोग है, रिश्तेदार है, या खटमल है, मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं या कॉकरोच है, इन सबसे आने वाले दुख। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे बोल सकते हैं कि हम सुखी हैं? और वो सुखी बनने के लिए हम अन्यायपूर्वक धन संचय करने का प्रयास करते हैं अन्यायपूर्वक, लोग सुखी बनने के लिए गांव छोड़कर करके बंबई आ रहे और बंबई लोग बंबई छोड़कर के अमेरिका जा रहे और अमेरिका के लोग अमेरिका छोड़कर के चंद्रमा पे जा रहे, पता नहीं वहां के लोग किधर जाते रहेंगे। पूरा भौतिक जीवन दुखमय है। एक व्यक्ति ज्योतिष के पास गया, उसने अपना हाथ दिखाया, पंडित जी बताओ ना मैं कब सुखी हो पाऊंगा, उम्र के 40 साल तक बहुत दुखे दुखे तेरे जीवन में बेटा, बहुत दुखी रहेगा तो उम्र के 40 साल तक, और उसके बाद तेरे को आदत हो जाएगी, उसके बाद तेरे को आदत हो जाएगी। जीवन में ऐसा कभी परिस्थिति नहीं आएगा कि हम सुखी बन जाएंगे, चाहे आप करोड़ रुपए कमा लो या 1000 करोड़ रुपए कमा लो, चाहे आप सबसे विश्व सुंदरी के साथ रहो या मिस्टर यूनिवर्स के साथ रहो, किसी के भी साथ रहो, मतलब जो इंजीनियर है उनको लगता है कि मैं IIT से करूंगा तो और सुखी बनूंगा, अरे उनको जाके पूछो सुखी है क्या, वो बोलते कि मैं MIT से करूंगा तो उसे सुखी हो जाऊंगा। तो ऐसी समस्या, ग्रास ऑन अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन, दूर के ढोल सुहावने लगते, जब तक दूर है उतना ही अच्छा है, पास में गए तो समस्या है। ये दुनिया में सुख है नहीं, ऐसा क्यों? एक छोटा सा उदाहरण देके मैं यहां पे रुकता हूं। यहां पर बुलेट किसके पास है? बुलेट है किसके पास? फोर व्हीलर गाड़ी किसके पास है? हाँ आपके पास है। क्या नाम है प्रभु जी आपका? राजेश। प्रभु के पास फोर व्हीलर गाड़ी कौन सा है? सेंट्रो। सेंट्रो गाड़ी है, डीजल डालते हैं पेट्रोल डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं। अभी समझो मैं राजेश प्रभु की गाड़ी लेकर, राजेश प्रभु गाड़ी लेके जा रहे और उनके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और उनको भी भूख लगी है और रास्ते में किधर भी रेस्टोरेंट नहीं है और राजेश प्रभु सोचते हैं कि गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डालो और मैं भी 1 लीटर पी लो तो सुखी हो पाएंगे क्या? गाड़ी सुखी हो जाएंगे वो दुखी हो जाएंगे हमेशा के लिए और उनके रिश्तेदार भी, हमको 4 माला ज्यादा करना पड़ेगा। तो उल्टा अगर समझो उनको भूख लगी है, गाड़ी को भूख लगी है और बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, खाली रेस्टोरेंट और ढाबा है उनके घर से यहां तक और वो खुद खाते हैं रेस्टोरेंट में और गाड़ी में भी 1 राइस प्लेट डाल देते टांकी के अंदर, गाड़ी चलेगी? वो चल के आ सकते हैं गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि दोनों का खाना अलग है, आत्मा का खाना अलग है और शरीर का खाना अलग है। शरीर का खाना है आहार निद्रा भय मैथुन और आत्मा का खाना है भगवान की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर भक्तिश्चेन वलक्षण। ये दोनों अलग अलग चीजें, हम या तो ये एक्सट्रीम में आते नहीं तो वो एक्सट्रीम में जाते हैं, हमें उसको बैलेंस संतुलित करना चाहिए। जैसा मछली को अगर पानी के बाहर निकालेंगे तो वो कभी नहीं सुखी हो पाएगा, उसको आप आईफोन दे दो नहीं तो ब्लैकबेरी दे दो नहीं तो एप्पल दे दो नहीं तो चप्पल दे दो, कुछ भी दे दो वो मछली कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, उसको आप केवल पानी में छोड़ दो सुखी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें सही रूप से संतुष्टि शांति समाधान चाहिए, जीवन में सुख चाहिए तो वो केवल राधा रास बिहारी के चरणों में है, भगवान के नाम चिंतन में है, हरि भक्ति में है, भगवत गीता और भागवत के श्रवण में है, प्रभुपाद जी जैसे महान महान आचार्यों की सेवा में है। नहीं तो रतन टाटा को भी टेंशन है, आज के श्लोक में है चिंता अपरिमेयम च, कितनी सारी चिंता। इतने बड़े यशस्वी व्यक्ति को, सफल हुए रतन टाटा को भी टेंशन है उसका वंशज कौन बनेगा आगे, उसकी कंपनी को कौन चलाएगा, साइरस मिस्त्री तो गड़बड़ कर रहा है, तो दूसरे को बिठाना चाहिए अभी इस उम्र में। TCS में छोटा जॉब लगेगा तो लोगों को अच्छा लगता है, ये तो उस 110 कंपनियों का मालिक, उसको अगर टेंशन है तो दुनिया को सब में सबको टेंशन, दुनिया में सबको टेंशन है। आप चिंता मत करो, वापस भगवान के चरणों में आइए तभी टेंशन खत्म हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे जो सादे ब्रह्मचारी एक रुपया कमाते नहीं, सुबह 4:30 बजे डांस कर रहे, सुबह 4:30 बजे दो ही लोग डांस करेंगे, एक भगवान के भक्त और दूसरे पागल लोग। इतना सुख है भगवान के चरणों में, इतना सुख है, समाधान है, कोई टेंशन नहीं। कौन लाइट का बिल भर रहा है, कौन पानी का बिल भर रहा है, कौन घर का भाड़ा दे रहा है, कुछ मालूम नहीं, सब भगवान के ऊपर निर्भर है। एक है इतने सारे रईस रईस लोग दिन रात टेंशन में, मेरा 500-1000 का नोट कैसे बदलो, और यहाँ पे वैष्णव सज्जन है, भक्त जन है, कुछ भी चिंता नहीं, सब भगवान के ऊपर निर्भर है। सुबह उठो, दोनों हाथ ऊपर करो और बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। केवल भगवान का नामस्मरण करना है, भगवान की सेवा करना है और भगवान के बारे में श्रवण करना है। अगर हम किसी घर गृहस्थी में है, कुछ बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, तो सारे परिवार के साथ घर में बैठे यही काम करना है बस, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। हमें केवल राधा राजबिहारी के ऊपर भरोसा होना चाहिए और उनके भक्ति करते रहना चाहिए। तो सब लोग अभी खड़े हो जाइए, भगवान अभी अपना दर्शन देने वाले, और मेरे पीछे दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, जोर से बोलो हरे कृष्णा। मेरे को सुनाई थोड़ा कम देता है, जोर से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौर नित्याय भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, उपस्थित भक्तवृंद के, नित्याय गौर प्रेमानंदे
पद कमलम श्री